दूसरा सैमुअल अध्याय 21। अब अध्याय 21 में ये लिखा है कि उस समय, अध्याय 21 पद 1, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की कि अकाल क्यों पड़ा। यहोवा ने कहा, ये शौल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। अब मेरे लिए ये दिलचस्प है, क्योंकि जब यहोशू प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करने आ रहा था, तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, वहां की भूमि के किसी भी व्यक्ति से कोई भी वाचा मत बांधना, तुम्हें कोई संधि नहीं करनी है और वाचा नहीं बांधनी है, उनका सफाया कर दो। अतः जब यहोशू ए नगर को जीत चुका, तब कुछ बुजुर्ग फटे जूते, फटे कपड़े और हाथों में सूखी रोटी लेकर यहोशू से मिलने आए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रसिद्धि सुनकर और ये सुनकर कि कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों को समाप्त किया और कैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे प्रधानों ने हमें तुम्हारे पास संधि करने को भेजा है कि ना तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे और ना तुम हमारे ऊपर आक्रमण करोगे। यहोशू ने कहा, ठीक, आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा, हम बहुत दूर से आए हैं। जब हम घर से चले थे तो हम गरम रोटी लेकर चले थे, लेकिन अब देखो ये सूख चुकी है। हमारे जूते नए थे, परंतु देखो अब ये फट चुके हैं। बाइबल बताती है, उन्होंने उनकी खाद्य सामग्री ले ली और परमेश्वर से नहीं पूछा, और उन्होंने उनके साथ वाचा बांधी। उन्होंने वही गलती की जो गलती हम हमेशा करते हैं, परमेश्वर की सलाह और बुद्धि को खोजने की जगह अपने स्वयं के अच्छे निर्णय का प्रयोग करते हैं। हम किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं, ओह अच्छा, ये ठीक है, ये स्पष्ट है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं यहां करूं। मैं दरअसल इस बात के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहता, इस मामले को मैं सुलझा लूंगा। परमेश्वर, मैं देख सकता हूं कि यहां क्या हो रहा है। हम परमेश्वर से नहीं पूछते, क्योंकि इसकी हम चिंता ही नहीं करते हैं। एक गाने की कड़ी है, गर्ची इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शाद तुम हो के बाप को जाकर खबर दो। सत्य, अति सत्य। अतः उन्होंने परमेश्वर से पूछे बिना ही उनकी खाद्य सामग्री ले ली और गिबोनियों के साथ वाचा बांध ली। और जब वे अगले शहर में गए और वहां अपने सैनिक फैलाने शुरू किए, तो लोगों ने कहा, ओह नहीं, तुम इस शहर पर आक्रमण नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या मतलब है, ये हमारा शहर है। इसलिए यहोशू समझ गया कि वो इन लोगों के द्वारा धोखा खा चुका था, इसलिए वो कहता है, अब मैं समझा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम लोग हमारे सेवक बनकर हमारे लिए लकड़ियां काटोगे। उन्होंने कहा, ये ठीक है, हमें मरने की अपेक्षा लकड़ियां काटना स्वीकार है और हमें तुम्हारे सेवक बनकर रहना मंजूर है। उन्होंने वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। दिलचस्प बात यह है कि एक बार वाचा बांधने के बाद परमेश्वर ये आशा करता है कि उस वाचा का आदर किया जाए। ये वाचा जो उन्होंने बांधी थी वो शुरुआत से ही गलत थी, उन्हें वाचा बांधने की कोई जरूरत नहीं थी। धोखे का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनको शुरू में ही बता दिया गया था कि उन्हें किसी प्रकार की वाचा उन लोगों से नहीं बांधनी है। अतः वाचा बांधने में उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। चाहे उनके साथ धोखा ही क्यों न हुआ था, फिर भी परमेश्वर चाहता था कि उन्होंने वाचा बांधी है तो वे उसका आदर करें। मेरे लिए ये एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर हमसे ये आशा करता है कि जो वाचा हम बांधते हैं हम उनका आदर करें। मेरे पास कई बार लोग सलाह के लिए आते हैं और वे शादी की वाचा या शपथ खाए होते हैं और वे कहते हैं, ओह ये एक गलती थी, मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था, और वे उस वाचा को तोड़ना चाहते हैं, वे उस वाचा के बंधन से निकलना चाहते हैं। वे कहते हैं, ओह वो एक गलती थी, मुझे ये कभी नहीं करना चाहिए था, और अब मैं इस वाचा को तोड़ना चाहता हूं। मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प बात है कि एक बार आपने शपथ खा ली या वाचा बांध ली, चाहे वो गलती हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आदर करें। शौल ने गिबोनियों के साथ बांधी गई वाचा को तोड़ दिया, उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसलिए बाद में जबकि शौल को मरे हुए सालों हो गए थे, लगभग 30 साल पहले शौल मर चुका था, परंतु उसके परिणाम दाऊद को भोगने पड़े कि उसके राज्य में ये 3 साल का अकाल पड़ा। दाऊद परमेश्वर से पूछता है और परमेश्वर कहता है ये न्याय है, क्योंकि शौल ने गिबोनियों के साथ वाचा तोड़ी और बहुत सारे गिबोनियों को मारा था। दूसरा सैमुअल अध्याय 21 पद 3 से लेकर 8 तक। तब शौल ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शौल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इसराइली को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हमारा ऐसा सत्यनाश हो जाए कि इसराइल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए यहोवा के चुने हुए शौल की गिबा नाम बस्ती में फांसी देंगे। शौल वही निवास करता था। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शौल के पुत्र योनाथन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनाथन के पुत्र मेपीबोशेत को, जो शौल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मेपीबोशेत नाम आया की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शौल से उत्पन्न हुए थे और शौल की बेटी मीकल के 5 बेटे जो महोलवासी बर्जलाई के पुत्र अद्रियल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वाकर। धर्मशास्त्र में हमें पहले बताया जा चुका है कि मीकल के कोई संतान नहीं थी, क्योंकि दाऊद ने उसे उसका मजाक उड़ाने के लिए सजा दी थी। किर्यातेरीम से परमेश्वर की वाचा का संदूक यरूशलेम को लाते वक्त वो उसके सामने रास्ते में नाच रहा था। जब वो घर पहुंचा तो बहुत उत्तेजित था और वो अपने घर वालों को आशीष देने ही जा रहा था कि मीकल ने ठट्टे से कहा, आह आज आप साधारण लोगों के साथ नाचते हुए क्या ही सुंदर लग रहे थे। दाऊद ने कहा, मैं इससे भी ज्यादा साधारण बनूंगा। इस कारण उसने मीकल के साथ सहवास करने से मना कर दिया था। अपनी मृत्यु तक वो निस्संतान रही। अतः अगर आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये पांच पुत्र शौल की बेटी मेरब के थे, जिसका विवाह गोलियात को मारने के पुरस्कार स्वरूप दाऊद से होना था। याद कीजिए, शौल ने कहा था, अगर कोई आदमी उस दानव को मारेगा तो उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। मेराब शौल की वो पुत्री थी जिसका विवाह वास्तव में दाऊद के संग होना था, परंतु शौल ने उसे धोखा दिया और उसका विवाह कहीं और कर दिया। उसके पांच पुत्र थे और यही पांचों पुत्र थे जो गिबोनियों को फांसी पर लटकाने के लिए दिए गए थे, और साथ में शौल के दो पुत्र भी जो वास्तव में शौल की एक रखेल से उत्पन्न हुए थे। दूसरा सैमुअल 21 अध्याय पद 9 से लेकर 14 तक। गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और सातों एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना तो कटनी के पहले दिनों में अर्थात जव की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या, जिसके दो पुत्रों को फांसी पर लटकाया गया था, कि बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर अत्यंत वृष्टि न पड़ी तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और ना तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शौल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शौल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था, जब उन्होंने शौल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। तो वो वहां से शौल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गई, और शौल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां बिन्यामिन के देश के जेला में शौल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई। अब 15वें पद का आरंभ देखिए, दूसरा सैमुअल 21 अध्याय पद 15 से लेकर 17 तक। पलिश्तियों ने इसराइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, परंतु दाऊद थक गया। तब इश्बोनोब, जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शकेल पीतल का था और वो नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने को ठाना, परंतु सरूया के पुत्र अभिशे ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तो फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने से इसराइल का दिया बुझ जाए। अतः दाऊद अब युद्ध के लिए बूढ़ा होने लगा था, युद्ध के लिए वो कमजोर हो रहा था, और गोलियात का बेटा उसको मारने वाला ही था कि अभिशे ने आकर उसे बचा लिया। इसलिए उस दिन के बाद से उन्होंने दाऊद का युद्ध में जाना बंद कर दिया। ये गोलियात के सारे रिश्तेदारों की मृत्यु के बारे में बताता है। पलिश्तियों के सारे दानव, इनमें से एक वो भी जिसके हाथों और पैरों में छह छह उंगलियां सब मिलाकर 24 उंगलियां थी, मारा गया।